स्पष्ट कहे
स्पष्ट कहे
पुष्टा
पुष्टा
प्रश्न पूछा,
प्रश्न पूछा
इतयः यहाँ पर किंचन वसत मन्ने, हम सोचते हैं,
हम सोचते हैं
त्वाम
आपको
विषय
सारे विषयों में
वाचम
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 शब्दार्थ
शब्दार्थ
स्नातम
स्नातम
पूर्ण रूप से ज्ञात
पूर्ण रूप से ज्ञात
अन्यत्र
अन्यत्र
छोड़कर
छोड़कर
चांदसा
चांदसा
वेदों का अंश
वेदों का अंश
अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री श्री मूर्ति श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हो, अथवा आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमें आपसे अभी पूछा जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मण एवं परिव्रजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्रजा का कार्य यह विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना प्रयास करते हैं, अथवा परिव्रजा का कार्य सदा वेदों मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लययुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यन्दितिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम अर्थ ऋग यजुर पुराण इतिहास उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से प्रारंभ हुआ है और इन मंत्रों का स्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व कहा गया है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भगवत के अध्ययन में लीन हो रहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन करते रहते हैं, अथवा उनका अथवा उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के स्वर पाठ में उतने पटु ना हो जो वही वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। टोटा रत्न की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तोता रत्न होम ज्ञान चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापित भूतले स्वयं रूप विरामेण ददा स्वपदांतिक वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साधवैतं साध्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाकान्वितं जय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासांश गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके पहले वाले श्लोक का खाली अनुवाद देखते हैं। शिवाय लोका लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नाम नात्मर्थम पशु पराश्रयम् मुमोच निर्विध्य कुचक कलेवरम। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरे के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अथवा राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्याद शरीर उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरे के लिए आश्रय तुल्य था। अच्छा, हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु है अथवा आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषिगण सुत गोस्वामी से जिज्ञासा करते वक्त ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने अनेक अनेक प्रश्न इसके पहले के श्लोकों में हमने बारी बारी से सुने कि उन्होंने ये प्रश्न किया कि वेद व्यास जी को कहाँ से उत्साह प्राप्त हुआ कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, कैसे उन्होंने की और किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो कि मुक्त होने के बाद भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए उनके हृदय में रुचि उत्पन्न हुई, और कैसे परीक्षित महाराज जो कि पूरे विश्व के रक्षक होने के बाद भी वो सब कुछ छोड़कर 7 दिन 7 रात लगातार श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए बैठ गए, जबकि उनका जो शरीर जो था वो अन्य लोगों के आश्रय तुल्य था, तत्पर भी उन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गया। तो यहां पर इन श्लोकों में जो प्रश्न जो पूछे गए हैं सुत गोस्वामी के समक्ष उस प्रश्न पूछने के बाद आज के इन श्लोकों में ये कह रहे हैं ऋषिगण कि कृपा करके आप इन सारे प्रश्न का उत्तर बताइए, क्योंकि आप सारे प्रश्नों के उत्तर को ठीक ठीक जानते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है, किंचिन मैं त्वाम विषय वाचम स्नातम, तो ये जो इन श्लोक ये जो शब्दों के द्वारा यहाँ पर जो चर्चा किया गया है कि आप वेदों के निष्कर्ष को बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो सुत गोस्वामी जो कि एक प्रामाणिक शिष्य परंपरा में आने के कारण वो ठीक ठीक जानते थे कि वास्तविक वेदों का निष्कर्ष क्या है, क्योंकि वेदों में जो भी शब्द जो है जो भी कुछ वेद जो हम देखते हैं, पुराण उपनिषद इत्यादि जितने भी जो भी भगवान के जो दिव्य वचन हैं, ये सारे वचन भगवान के श्वास से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में यहाँ पर वर्णन है, कर्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। तो वो जो भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो उसी श्वास में ये सारे वेदों का जो रचना है वो उत्पन्न होता है, जितने भी वेद जो साहित्य है तो भगवान के श्वास से उत्पन्न हुआ। और हालांकि इसका जो मूलभूत जो शब्द जो है वो है ओमकार, और उसी ओमकार से अनेक अनेक वेद साहित्य की उत्पत्ति होती है। तो वैसे यहाँ पर वो जो वेद को समझना इतना आसान नहीं है, उसे समझना मतलब व्यक्ति को एक प्रामाणिक शिष्य के अंतर्गत आना जरूरी है। जब तक वो ये प्रामाणिक शिष्य के अंतर्गत नहीं आएंगे तब तक उसे ये पता नहीं लगेगा कि ये वेद का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि जितने भी वेद साहित्य जो है उनके तीन भाषाएं हैं, एक तो समाधि भाषा, दूसरा दर्शन भाषा और तीसरा गुह्य भाषा या तो कूट भाषा। तो ये जो तीन भाषाओं में जो कूट भाषा है इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये इसीलिए बताया गया है अष्टम श्लोक सहस्त्रानि अष्टम श्लोक शतम च अहम वेति सुख वेति संदेह वेति को नव। वेदव्यास जी स्वयं बताते हैं कि ये जो वेदों के शास्त्रों के जो श्लोक है, जो गुह्य श्लोक जो कूट भाषाई जो है, इसको केवल मैं जानता हूँ। वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, संजय वेति को नवा, संजय वेति जान रहा है नहीं जान रहा हूं मुझे ठीक से पता नहीं। तो ये जो वेदों के जो शब्द जो अर्थ है, जब तक व्यक्ति इसको ठीक से नहीं समझेंगे तब तक वो कोई भी प्रश्न का उत्तर भी ठीक से नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर ऋषिगण कह रहे हैं कि आप कौन हो, स्नातम, स्नातम यानी कि पूर्ण रूप से ज्ञाता, आप सभी तरह से जानकारी रखते हो कि वास्तविक इस शास्त्र का निष्कर्ष क्या है, और जो निष्कर्ष जानेगा वही व्यक्ति जान पाएगा, नहीं तो वो भले ही वेद संस्कृत वगैरह कितना भी अगर वो पढ़ भी ले, लेकिन वो वेद का निष्कर्ष नहीं जान पाएगा जब तक वो एक प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कि एक श्लोक आता है जो कि एक कूट भाषा है, इस कूट भाषा को बताते हैं, उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम मृत कर्तव्यम काक विष्टा समुक्तम पंचपूतानि भारता। अब ये यहाँ पर ये पांच वस्तुओं को पवित्र माना गया है। तो ये पांच वस्तु क्या क्या है, उच्चिष्टम झूठा, झूठा पवित्र है, शिव निर्माल्यम, शिव निर्माल्यम पवित्र, शिव निर्माल्यम यानी कि क्या हुआ भस्म इत्यादि शिव निर्माल्यम, और वमनम उल्टी पवित्र है, और चौथा मृत कर्तव्य, मरे हुए व्यक्ति के शव के ऊपर जो कपड़ा डाला है वो पवित्र है, मृत कर्तव्य। और काकविष्ठा, कौवा जहाँ पर मल त्याग करता है वो स्थान पवित्र है। समुक्तम पंचभूतानि भारता। अब ये वेद व्यास जी जन्मेजा को ये बात बता रहे कि ये पांच वस्तु पवित्र है, तुम ये जानो। अब कोई ये नहीं पढ़ेगा ये घुय भाषा को तो वो कूट भाषा में भ्रमित हो जाएगा कि ये क्या है। अब ये उच्चिष्टम वो जो झूठा वस्तु कैसे पवित्र माना जाएगा, लेकिन वेद व्यास जी बता रहे कि ये पवित्र है। तो झूठा मतलब क्या, झूठा क्या पवित्र है, कोई बता सकता है? झूठा नहीं, झूठा जो कि गाय का जो दूध है उसको, गाय के दूध को झूठा माना जाता है, क्योंकि गाय तब तक दूध नहीं देगी जब तक उसके बछड़े नहीं पिएंगे, और बछड़ा पीने के बाद गाय जब दूध देती है तो गाय का बछड़ा जब दूध पी लिया तो मतलब झूठा हो गया। अब जब झूठा हो गया तब उस दूध को वितरण किया जाता है, हालांकि उसे झूठा होने के बाद भी उसे पवित्र माना जाता है। तो उच्चिष्टम पवित्र है, और शिव निर्माल्यम। अब महादेव के पास से कौन सी ऐसी वस्तु है जो पवित्र है, जिसको हम अब उनके शरीर का जो वो जो भस्म लगाते हैं इत्यादि, उसे तो हम नहीं लगा सकते। वो शव के इधर का जो शमशान भूमि का भस्म, जिसके लिए हम तो नहीं लगा सकते। एक बार राधा गोविंद महाराज को एक व्यक्ति कह रहा था, एक महादेव का उपासक, बोला कि महाराज आइए यहाँ पर भस्म लगा के जाइए। राधा गोविंद महाराज कहने लगे, क्षमा करिए, मैं इसमें योग्य नहीं हूँ ये लगाने के लिए, इसके लिए योग्यता चाहिए मेरे पास नहीं है। तो वास्तविकता जो शिव निर्माल्यम जो है उसमें भी यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे पवित्र है, और वो क्या है, और वो है गंगा। गंगा जो है वो शिव महादेव के मस्तक से ही आ रहा है, लेकिन तट पर भी उसको पवित्र माना गया है, शिव निर्माल्य। अब तीसरा बताते हैं वमनम, यानी कि उल्टी। उल्टी वो भी पवित्र है। अब उल्टी क्या है जो पवित्र हम मानेंगे, जैसे कि मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है वो क्या करते हैं कि फूल से मध निकालकर वो एक जगह इकट्ठा करता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने मुंह से खींच रहा है और वापस जाकर इकट्ठा कर, तो वो है तो क्या, वो उल्टी हुआ, लेकिन तत्पर भी वो पवित्र माना जाता है। और खास करके बलराम जी के लिए बड़ा प्रिय है, तो अभिषेक के लिए वगैरह उपयोग किया जाता है। वमनम मृत कर्तक्यम, जो कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो कपड़ा है, भले व्यक्ति कितना भी अच्छा कपड़ा क्यों ना डाले मरते वक्त, लेकिन तट पर भी वो कपड़ा जो है वो अशुद्धि माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो जो मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर जो कपड़ा है उसको भी पवित्र माना गया है, और वो है जो कि सिल्क वॉर्म, जो कि रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा के ऊपर वो शरीर हालांकि मर जाता है, लेकिन तट पर भी उसके कपड़े को पवित्र मानते हैं, मृत कर्तक्यम। और फिर बताते हैं काकविष्ठा, कौवा जहां पर हकता है। अब कौवा तो एकदम निकृष्ट प्राणी माना गया, लेकिन तट पर भी कौवा हगने के बाद भी वो स्थान पवित्र है, वो कहाँ है, तो वो है वटवृक्ष। ये वटवृक्ष भले ही उसके ऊपर कौवा हग भी दिए, तट पर भी वो स्थान पवित्र माना जाता है। ऐसे पंचपूतानी भारता, ऐसे पांच स्थान जो है इसको तुम पवित्र जानो। ये क्या हो गया, एकाएक ब्लैक पता नहीं क्या। तो ये पांच जो स्थान है, ये पांच स्थान को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पांच स्थान पवित्र हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो वेदों में ऐसे कई भूय और कूट भाषाएं हैं जिसे व्यक्ति तब तक नहीं समझेगा जब तक वो प्रामाणिक, इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि अहम वेति सुख वेति संजय वेति को नवा। संजय जानते हैं कि नहीं वो मुझे डाउटफुल है। तो इसीलिए जो जब तक व्यक्ति एक प्रामाणिक शिष्य के पास जाकर शिक्षा नहीं धारण करेंगे तब तक वो अपने मन के अंतर्गत के जो अब सभी लोगों का अपना अपना एक सिद्धांत रहता है तो वो सिद्धांत को नहीं छोड़ेगा। हर व्यक्ति जब तक वो प्रामाणिक गुरु के पास जाकर शिक्षा नहीं लेगा तब तक वो अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ेगा। जैसे एक नास्तिक सिद्धांत लिखने वाले वो कहते हैं कि ऋतम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवित सुखम जीवित भस्मसी देहस्य भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनर्जन्म। तो वो कहते हैं कि जब तक जी रहे तब तक उधार लेकर जियो और खूब घी पियो और इतना घी पीकर मस्त रहो। हालांकि वो अगर आज लिखते तो वो घी नहीं लिखते थे क्योंकि आज की तारीख में घी किसी को पसंद नहीं है। लेकिन वास्तविक अगर कोई जी रहा है तो घी खाकर जियो, उधार लेकर जियो, क्योंकि मरने के बाद ये देह जो है भस्म में मिल जाएगा और एक बार भस्म में मिल जाएगा तो पुनर्जन्म किसने देखा है। इसलिए जैसे जीने अभी जी लो। इसलिए जब तक व्यक्ति अपने सिद्धांत या अपने उपदेश को व्यक्ति बखान करता रहेगा तब तक वो प्रामाणिक परंपरा के उपदेश को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसे पहले अपने जो बखान को बंद करना होगा। इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपना बखान किया, इसलिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन गीता ना कि भगवत गीता, क्योंकि अर्जुन ने अपना गीता यानी क्या गीत, तो अर्जुन ने अपना गीत गाया और इसलिए भगवत गीता की शुरुआत वहां पर हुई नहीं है क्योंकि अर्जुन का एक अपना एक नया सिद्धांत था। तो वैसे व्यक्ति हर व्यक्ति का अपना अपना एक एक सिद्धांत होता है और जब तक व्यक्ति एक प्रामाणिक निष्णात के पास जाकर वो शिक्षा धारण नहीं करेगा तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं केशव पतितम दृष्टा पांडव हर्ष निर्भरा कौरव रुधंतस्ति अह केशव। अब इसका अर्थ क्या है, केशव पतितम दृष्टवा, जब केशव पतितम दृष्टवा पांडव हर्ष निर्भरा, पांडव लोग बहुत खुश हो गए कि केशव गिर गया। कौरव रुदंतस्ति, कौरव लोग रो रहे अह केशव। अब ये हो सकता है कि पांडव बड़े खुश हो सकते हैं क्या जब केशव गिर जाएंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ बताते हैं केशव को दो भाग में विभाजित किया, जैसे कह यानी कि नदी, शव यानी कि लाश। तो केशव यानी कि नदी में लाश बहता हुआ जा रहा है, दृष्टे पांडवा यानी कि संस्कृत में मच्छी को भी पांडव कहते हैं, तो पांडवा दृष्टे पांडवा हर्ष, तो जितने भी मछली थे सब हर्षित हो गए, वाह कि हमारा फिश आ गया। अब निर्भर कौरव, अब कौवे को भी कौरव करके संबोधित किया गया। तो कौवे लोग बोला वो पेड़ पर बैठे हैं तो वो देख रहे कि नदी से लाज बहता हुआ जा रहा है, तो बोल रहे कि अह केशव अह केशव। तो कौरव रुदन तस्ती, वो रो रहे कि अरे देखो ये लाश जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो कोई अगर इसको अर्थ को ठीक से नहीं समझेगा तो फिर उसका अर्थ का अनर्थ ही बन जाएगा। इसीलिए वो एक जब ऐसे जो निष्णात के पास जाकर वो शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो उस अर्थ का अनर्थ बन जाता है, क्योंकि हर वस्तु का एक कारण होता है। अभी जैसे कोई भी वस्तु अगर बनानी है तो उसे क्या चाहिए हमें, पहले तो उसका डिजाइन बनाना होगा। कोई भी वस्तु अगर बनाना है तो बनाने के लिए, अगर मान लो कि अगर मंदिर बनाना है तो पहले क्या करना होगा, डिजाइन बनाना होगा, फिर दूसरा उसके सामग्री को इकट्ठा करना होगा, फिर तीसरा जो कि उसके अंदर वो सामग्री को इकट्ठा करके अब पूरे प्लान करना होगा कि इसको कैसे बनाया जाए, और चौथा जो कि मुख्य है कि ये किस लिए बना रहे। जैसे कोई भी वस्तु बना रहे तो पहला स्वरूपेना प्रधान, पहला उसे स्वरूपेना प्रधान होना जरूरी है। कोई भी वस्तु बना रहे तो पहला ये जरूरी है कि ये बनाने के लिए पहला डिजाइन जरूरी है। तो वो डिजाइन बनाने के बाद स्वरूपेना प्रधान, और जब स्वरूपेना प्रधान हुआ तो दूसरा होगा उपादान। उपादान यानी कि वो वस्तु, जैसे कि अगर मंदिर बनाया, मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाने के लिए पहले डिजाइन बनाया, अब उपादान दूसरा। उपादान यानी कि क्या, वो वस्तु बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, मार्बल इत्यादि चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए उपादान वो सामग्री। और तीसरा जो कि निमित्त यावन, तो वो वस्तु बनाने के लाने के बाद उससे वर्कर लोगों को जोड़ना है, कैसे उसे बनाना है, वो सब जरूरी पड़ेगा। तो निमित्त यावन, और निमित्त यावन के बाद आएगा अंतिम जो कि अर्थ विशेष, कि ये मंदिर, अब मंदिर वगैरह बना दिया तो अब ये नहीं कि चलो बैठो बने मंदिर क्यों बनाया वो बताने। तो वो जो मुख्य जो अर्थ विशेष है वही व्यक्ति का खो चुका है। तो जो शास्त्र व्यक्ति अगर अपने ढंग से अगर पढ़ेगा, अपने ढंग से अगर समझने का प्रयास करेगा, तो वो शास्त्र को अगर वो ठीक से नहीं समझेगा तो उसका जो मूल जो अर्थ विशेष है वही नष्ट हो जाएगा। जैसे जो कल ही मैं और प्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि जो आज हमारा जो भारत के जो नेशनल एंथम है, ये नेशनल एंथम वास्तविक इसका अर्थ क्या है। ये नेशनल एंथम ये हमारे भारत के लिए नहीं है, ये नेशनल एंथम जब उस समय की बात थी कि जब ब्रिटिश लोगों का जब राज्य था तो उस समय एक वॉइस रॉय, अल्बर्ट वॉइस रॉय, ये जब भारत में आ रहा था, अमेरिकन वॉइस रॉय था, तो उसके स्वागत के लिए ब्रिटिश लोगों ने रविंद्र टैगोर को कहा कि आप अच्छा कवि लिखिए उनके स्वागत के लिए। तो उनके स्वागत के लिए उन्होंने ये कवि लिखा, और वो कि आप जन के नाथ हो और ये आप यहाँ पर आए, भारत भाग्य विधाता, ये भारत बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि आप यहाँ पर आए हो। अब उसको स्तुति करने के लिए जो गीत गाया गया और वही गीत आज के तारीख में हमारा नेशनल एंथम बन गया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान। तो अब ये राष्ट्रगान बन चुका है, जबकि लोगों को इसका वास्तविक अर्थ क्या वही नहीं पता है। तो जो मूल जो अर्थ विशेष है वही हट चुका है। जो करना चाहिए था, जिस अर्थ विशेष के उसका उद्देश्य था वो हटकर कुछ और ही बन चुका है। और वैसे ही सभी जितने भी, अगर कोई अगर शास्त्र के अर्थ विशेष को नहीं जानेगा, अगर उसे पढ़ने का प्रयास करेगा और वो समझने का प्रयास करेगा तो वो भौंकला जाएगा कि ये वास्तविक है क्या। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं चाय पीना चाहिए, अब कहाँ लिखा है, तो बताते 15वें अध्याय के 15वें श्लोक, तो सर्वस्य चाहम। अब इसको भी वो बड़े संधि विशेष करके बताते, सर्वस्य सभी को, सर्वस्य चाहम सभी को चाय बड़ा पसंद है, और अहम यानी कि मैं भी, और वो भी कैसे, रिद्धि संगनी स्टोव, स्टोव में बना हुआ चाय स्टोव। तो एक ही अर्थ का अनेक अदर्थ बन जाता है, तो वो जो बोलना है वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, कुछ और समझ रहा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति यह नहीं पढ़ेगा तब तक व्यक्ति वो समझ नहीं पाएगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो वैसे जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि एक मास्टर जी लोगों विद्यार्थियों को बता रहा है कि शराब का प्याला कितना जहरीला है, तो वो जहरीला प्याला बता कहते हुए वो क्या करते हैं, उसी शराब के प्याले में एक मुंगी चीटी डाल देते, तो चीटी तड़प तड़प के मर जाता है। तो वो सारे विद्यार्थी को पूछता है यहाँ पर कि आपको इससे क्या शिक्षा मिला, तो एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता है, मास्टर जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, क्या ये प्याला एक ऐसा प्याला है इसको पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे, इसलिए क्या करो रोज पियो। अब उसको कहना था कुछ और विद्यार्थी समझा कुछ। तो वैसे ही वहां पर विद्यार्थी ने अपना तात्पर्य लगा दिया, जबकि वो अपने मास्टर जी के भावार्थ को नहीं जाना कि मेरे मास्टर जी का भाव क्या था। वैसे ही अनेक जो भी जो श्लोक है, उस श्लोक को व्यक्ति अगर केवल अपने ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो वो जो श्लोक का वास्तविक अर्थ खो जाएगा और कुछ और बन जाएगा। जैसे एक राजा था, वो एक श्लोक बहुत सुनता था, उसे बड़ा पसंद था, और वो था शुक्लांबर धर्म विष्णु, तो रोज सुनता था ये श्लोक, शुक्लांबर धर्म विष्णु सचिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्नम वदनम ध्याय सर्व विघ्न उपशांति। तो ये बहुत सुनकर बड़ा आनंद लेता था। तो एक समय की बात थी कि एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि राजन आपको पता है इसका वास्तविक अर्थ क्या है। बोला नहीं। बोला इसका वास्तविक अर्थ ये चांदी के 1 रुपए के सिक्के के साथ। बोला अच्छा। बोला लग गए थे। बोला देखो शुक्लांबर धर्म विष्णु शशि वर्णम, जो कि चांदी का सिक्का का कौन सा कलर है, शशि, वो सफेद कलर का है, और चतुर्भुजम चारणा चारणा चार बार मिल गया तो बन जाएगा 1 रुपया चतुर्भुजम, प्रसन्नम बदनम ध्याय, अगर गरीबी अवस्था है तो ये जैसे ही मिलेगा तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और जैसे ही उसे मिल गया तो सर्व विघ्न उपशांति, सारे विघ्न हट जाएंगे। तो बोला वाह ये तो बहुत अच्छा उतना। तो यू सेलेक्टेड ही रिजेक्टेड, उसको कर दिया। बोला ये बढ़िया अर्थ है इसको ही रखो, और उसको रख दिया। अब ये घर पे गया तो ये जब घर पे गया तो लड़का ने पूछा क्या हुआ पिताजी, तो ऐसे से बताया, तो लड़का ने कहा चिंता मत करो मैं जाता हूँ। तो अब लड़का आया, अब जब लड़का आया तो उन्होंने कहा हे राजन आपको पता है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। बोला नहीं। उसका वास्तविक अर्थ दही वड़ा के साथ है। बोला अच्छा। बोला कैसे। बोले देखो शुक्लांबर धर्म विष्णु शशि वर्णम, जो कि दही वड़ा और चांदी का सिक्का लो, दोनों में से किस कौन सा ज्यादा सफेद है? दही वड़ा। तो बोला दही वड़ा ज्यादा सफेद है। तो शशि वर्णम और चतुर्भुजम, और जब खाने की बारी आती है तो चार वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्भुजम सब खा सकते हैं। प्रसन्नम भजनम ध्यायेत, जैसे ही व्यक्ति खाएगा तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, और जैसे ही प्रसन्न हो जाएगा तो सारा भूख मिट जाएगा, तो सर्व विघ्न उपशांति। बोला वाह वाह क्या उत्तर बताया। बोले तुम्हें हम चुने लेंगे उसे हटा। तो अब यहाँ पर राजा को जो वास्तविक अर्थ है वो अर्थ ही नहीं पता, जो जो व्यक्ति नए नए आते वो नया नया अर्थ देता है। तो कहने का मुख्य अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो कहा गया है, वचम स्नातम अन्यत्र छंदसात, मैं हम तुम्हें ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वचम स्नातम, क्योंकि आप पूर्ण रूप से ज्ञाता हो। स्नातम यानी कि आप पूरे वेद साहित्य के अर्थ को बड़े अच्छी तरह जानते हो, और इसीलिए हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृपा करके हमें अर्थ बताइए कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है। और ऐसे उन्होंने इस जिज्ञासा को सुत गोस्वामी के समक्ष रखे। हरे कृष्ण। तो प्रश्न को जिज्ञासा तो पूछ स्वरूप रू एनी कमेंट्स
असली में वो भजन है।
अच्छा अच्छा जनक है ना, मन हति नायक जय पूरे विश्व के
आप भजन बोल रहे, उन्होंने भजन नहीं कर रहे भगवान के लिए,
और वो अमेरिकन को क्या समझेगा संस्कृत के। अच्छा जगन्नाथ भक्त थे, अच्छा अच्छा अच्छा
उन्होंने भजन नहीं किया, एक्चुअली वो भजन
थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।